नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में हर चुनौती से निपटने की क्षमता है और वंदे मातरम की भावना उस शक्ति का प्रतीक है। लोकसभा में आज चुनाव सुधार के मुद्दों पर, जबकि राज्यसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 2023 और 2024 के लिए प्रतिष्ठित शिल्पकारों को हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत ने बाघों के संरक्षण के लिए संबंधित देशों के साथ मजबूत प्रयास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स गठबंधन में शामिल होने का आह्वान किया। जापान के उत्तर पूर्वी तट पर 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, हालांकि सुनामी की चेतावनी हटाई गई। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज शाम कटक में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर चुनौती पर काबू पाने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की भावना इस शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर चर्चा के दौरान ये बात कही। राष्ट्रीय गीत को 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। श्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत या रचना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति लोगों को जागरूक करने की प्रेरणा का स्रोत है और लोगों के सामने एक आत्मनिर्भर भारत निर्मित करने के सपने का लक्ष्य है।
भारत हर चुनौतियों को पार करने में सामर्थ्य है। वंदे मातरम के भाव की वो ताकत है। वंदे मातरम ये सिर्फ गीत या भाव गीत नहीं, ये हमारे लिए प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के लिए हमें जगजोड़ने वाला काम है और इसलिए हमें निरंतर इसको करते रहना होगा। हम आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, इसको पूरा कर रहे हैं। वंदे मातरम हमारी प्रेरणा है।
श्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के मंत्र ने स्वाधीनता आंदोलन को सक्रिय बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम का विरोध करने वाली मुस्लिम लीग की राजनीति ने 1937 में गति पकड़ी। श्री मोदी ने वंदे मातरम पर समझौता करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राष्ट्रीय गीत पर मुस्लिम लीग के सामने झुक गई। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम और कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध नारे बुलंद किए।
मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी।
चर्चा में भाग लेते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम देश के वर्तमान, भूत और भविष्य का हिस्सा है।
वंदे मातरम हमारा गौरव है, हमारी पहचान है और हमारे संविधान की सबसे ऊंची पुकार है। वंदे मातरम मातृभूमि के प्रति वात्सल्य का अनहद नाद है। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम के उन अज्ञात अवर्णित सैनिकों की याद है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वंदे मातरम हर उस सैनिक को हौसला देता है जो आज भी अपनी मातृभूमि के लिए हर दुश्मन का सामना कर रहा है।
वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वंदे मातरम देश की आत्मा है और हर भारतीय इसे गाते हुए गर्व का अनुभव करता है।
आज भी सरहद पर जवान जब दुश्मन का सामना करता है तो उसकी छाती में वंदे मातरम गूंजता है। जब हमारा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाता है तो उसके दिल की धड़कन में वंदे मातरम होता है। आज भी इस देश के करोड़ों देशवासी राष्ट्र ध्वज को फहराते हुए देखते हैं तो उनकी जबान पर वंदे मातरम आता है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कुल 66 सदस्यों ने बहस में भाग लिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने देखा कि कैसे सदन में सभी लोग आधी रात तक वंदे मातरम पर चर्चा के लिए एक साथ आए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सदन में ऐसी रचनात्मक चर्चाएं होती रहेंगी। लोकसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी, जबकि राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के संसदीय दल की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। ये बैठक संसद पुस्तकालय भवन पीएलबी के जीएमसी बालयोगी सभागार में होगी। लोकसभा और राज्यसभा के सभी एनडीए सदस्यों को बैठक में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में वर्ष 2023-24 के लिए प्रतिष्ठित कुशल शिल्पकारों को हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान असाधारण कलात्मक निपुणता का सम्मान करते हैं और भारत की समृद्ध तथा विविध हस्तशिल्प विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गरेटा भी इस समारोह में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह के हिस्से के रूप में देश भर के उत्कृष्ट मास्टर शिल्पकारों को सम्मानित करने के लिए वर्ष 2023 और 2024 के लिए हस्तशिल्प पुरस्कार आज प्रदान किए जाएंगे। इन सम्मानों में प्रतिष्ठित शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं। दोनों वर्षों में 6 कारीगरों को शिल्प गुरु पुरस्कार मिलेंगे, जबकि 18 शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। 2002 में स्थापित शिल्प गुरु पुरस्कार हस्तशिल्प क्षेत्र में सर्वोच्च मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन कारीगरों को दिए जाते हैं जिन्होंने भारत की शिल्प परंपराओं को संरक्षित करने में असाधारण कौशल, नवाचार और योगदान का प्रदर्शन किया है। प्रतिवर्ष 8 से 14 दिसंबर तक मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह देश के कारीगर समुदाय का उत्सव मनाता है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
विदेश मंत्रालय आज नई दिल्ली में 5वां अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान आयोजित करेगा। मंत्रालय ने बताया कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ सलाहकार टीओची हेन बदलती दुनिया में स्थायी साझेदारियां विषय पर व्याख्यान देंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बिग कैट की आबादी वाले देशों से संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में IBCA के तहत बिग कैट संरक्षण के लिए सहयोगात्मक पहल पर एक उच्च स्तरीय बातचीत की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 2026 में नई दिल्ली में वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि वर्तमान के हवाई संकट के लिए इंडिगो पूरी तरह जिम्मेदार है और वो अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रही है। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में श्री नायडू ने कहा कि सरकार पर उनका कोई दबाव नहीं है और उसने हमेशा सभी एयरलाइन के साथ समान व्यवहार किया है। उन्होंने घोषणा की कि सरकार इंडिगो के कुल 2,200 हवाई मार्गों को बंद करके और उन्हें अन्य ऑपरेटरों को सौंपकर उसके संचालन को सीमित करने की योजना बना रही है।
और सेफ्टी की जब बात आती है तो सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है और कभी कभी हो सकता है सेफ्टी के सेंस में हमें कुछ निर्णय लेना पड़े तो उसका भी रेस्पेक्ट यात्रियों को करना पड़ेगा क्योंकि सेफ्टी इज ऑफ द अटमोस्ट प्रायोरिटी। ये एक जो इंसिडेंट हुआ हमारे एविएशन को या फिर हमारे एविएशन की जो शक्ति है या फिर हमारे पैसेंजर की जो क्षमता है उसको कनेक्ट ना करें, वो एकदम बहुत मजबूत है।
इस बीच नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा है कि उड़ान संचालन लगभग सामान्य हो गया है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने ये जानकारी दी।
Things are almost back to normal.
हवाई सेवाएं अब सामान्य हो गई हैं। संचालन पूरी तरह से सुचारू है। इंडिगो ने 1,800 से अधिक उड़ानें संचालित की जो लगभग सामान्य स्तर है। अकासा, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट जैसी अन्य एयरलाइनें भी अपनी पूरी क्षमता के साथ उड़ानें चला रही हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि स्थिति सामान्य होती दिख रही है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज तिरुपति और साईनगर शिरडी को जोड़ने वाली नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दक्षिण मध्य रेलवे ने एक विज्ञप्ति में बताया कि उद्घाटन सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। उत्तर पूर्वी जापान में बीती रात 7.5 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। जापान मौसम विभाग के अनुसार भूकंप का केंद्र आओमोरी क्षेत्र के तट से लगभग 80 किलोमीटर दूर था, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप के कारण प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में 70 सेंटीमीटर तक की सुनामी आई है, जो अब टल गई है। इधर मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और विदर्भ में शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज घना कोहरा छाया रह सकता है। क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज शाम 7 बजे से कटक के बारोबाटी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बताया कि टीम आगामी T20 विश्व कप की तैयारियों को ध्यान में रखकर मैदान में उतरेगी।
T20 वर्ल्ड कप का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था 2024 का, जो T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ था उसके बाद ही, क्योंकि कोई भी बड़ा टूर्नामेंट के आप लास्ट एक महीने दो महीने में आके ये नहीं सोच सकते कि अरे अभी टूर्नामेंट आ गया है, अभी प्रिपरेशन चालू हो गया।
हॉकी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में खेला गया 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा टेस्ट मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। भारत फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। वहीं जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2025 में आज चिली में भारत का मुकाबला उरुग्वे से होगा। मैच रात 10 बजे शुरू होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
धन्यवाद सरफिरोजी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में चर्चा को अधिकतर अखबारों ने सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान लिखता है, वंदे मातरम पर संसद में वाक युद्ध। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कथन को दिया है, कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। वहीं वीर अर्जुन ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के इस बयान को दिया है, बंगाल चुनाव के चलते कराई गई वंदे मातरम पर चर्चा। इंडिगो संकट 7वें दिन भी बरकरार, शीर्षक से देशबंधु लिखता है, इंडिगो की सेवाएं सोमवार को भी पटरी पर नहीं लौट सकी। देश भर में 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द। दैनिक जागरण की सुर्खी है, कैफ फॉर्मूला बेअसर, मनमाना किराया वसूल रही एयरलाइंस। अमर उजाला ने नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू के इस कथन को प्रकाशित किया है, संकट के लिए इंडिगो जिम्मेदार, ऐसी कार्रवाई करेंगे जो मिसाल बनेगा। इंडिगो के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है, अब 5 नहीं 3 दिसंबर से बुक फ्लाइट पर मिलेगा रिफंड। हरक्यूलिस विमानों का बेंगलुरु में खुलेगा मरम्मत केंद्र, रोजगार उद्योग बढ़ेंगे, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, सैन्य मालवाहक विमानों की मरम्मत में आत्मनिर्भरता की दिशा में देश की बड़ी छलांग, भविष्य में विमानों के निर्माण की संभावना। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर खराब श्रेणी में जाने को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। पंजाब केसरी लिखता है, CPCB का अनुमान, बुधवार तक हवा बेहद खराब श्रेणी में रहने की संभावना।
धन्यवाद आकर्षिता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में हर चुनौती से निपटने की क्षमता है और वंदे मातरम की भावना उस शक्ति का प्रतीक है। लोकसभा में आज चुनाव सुधार के मुद्दों पर, जबकि राज्यसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 2023 और 2024 के लिए प्रतिष्ठित शिल्पकारों को हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान करेंगी। जापान के उत्तर पूर्वी तट पर 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज शाम कटक में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।